जो पुण्य फल की कामना करता है तो तस विषो ही दूरे। अब ऐसा लोभी आदमी जो है उससे विशुद्धि तो दूर रहती है। माने जिसको पुण्य फल की कामना है कि दुनिया भर के इतना हमारे 4 बंगले बन जाए और फिर इतनी फैक्ट्रियां खुल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये जो जिसके मनोरथ बहुत लंबे चौड़े हैं, विशुद्धि उसके मन में उत्पन्न नहीं हो सकती। तो पुण्य का फल कैसे मिलेगा? विशुद्धि नहीं होगी तो पुण्य का बंध नहीं होगा, और पुण्य का बंध नहीं होगा तो पुण्य का फल कहां से मिलेगा? इसलिए लोभी आदमी के लिए पुण्य का फल नहीं मिल सकता। पुण्य के फल की कामना उसके अंदर होती है लेकिन उसके पास पुण्य नहीं होता। विशो ही मूलानी पुण्यानी, पुण्य जो होते हैं वो विशुद्धि मूलक होते हैं, अर्थात विशुद्धि हो तो पुण्य बंध हो, ऐसा है। पुण्णासायन पुण्यम जदो निरीहस पुण्य संपत्ति, ये जानियून जैनो पुण्य विम आयरम कुणह। पुण्य की आशा से पुण्य नहीं होता, पुण्णासाय न पुण्यम, पुण्य की आशा करने से पुण्य नहीं होता। जदो, क्योंकि निरीहस पुण्य संपत्ति, जो इच्छाओं को छोड़ता है उसको पुण्य की संप्राप्ति होती है। ये जानी उन्हें, ऐसा जानकर जैनो यतिजन पुण्य विम आयरम कुण, पुण्य के प्रति ज्यादा रुचि मत दिखाओ। साधुओं की रुचि जो होती है कर्म निर्जरा और मोक्ष के प्रति होनी चाहिए, पुण्य संचय में साधुओं को ज्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए। पुण्य की जरूरत गृहस्थ को है, गृहस्थ जीवन में शुभोपयोगस्तु मुख्य है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा प्रमुखता इसकी है, दान और पूजा की। स्वाध्याय आदि सारी चीजें गौण है गृहस्थों में, दान और पूजा ही गृहस्थों में अनिवार्य है, क्योंकि इस पुण्य से उसको देव शास्त्र गुरु का समागम जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होगा, और तब कहीं जाकर के उसको साधु बनने की भावना पैदा होगी और क्षमता पैदा होगी। वो क्षमता प्राप्त करने के लिए उसको पुण्य चाहिए, इसलिए गृहस्थ जीवन में पुण्य छोड़ने की बात नहीं है। यहाँ साधुओं के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें तो मोक्ष जाना है, फिर तुम पुण्य में रुचि क्यों दिखा रहे हो? ज्यादा ज्यादा रुचि मत लो पुण्य में। पुण्यम बंधति जीवो मंद कसाई ही परिणदो संतो, तम्मा मंद कसाया हेउ पुण्यस नहि वांछा। वंछा, ठीक है, वंछा सही है। हेउ पुण्यस नहि वंछा, संस्कृत में वांछा है, प्राकृत में वंछा है। बोले कि मंद कषाय परिणतो संतो जीवो, मंद कषायों से परिणत होता हुआ जीव पुण्यम बंधति, पुण्य का बंध बांधता है। कषाय शांत हो, मंद हो, तब पुण्य का बंध होता है। तम्मा, इसलिए पुण्यस्य हेउ, पुण्य के हेतु कौन है? मंद कषाया, मंद कषाय है, नहीं वांछा। वांछा जो है लोभ लालच तृष्णा वांछा, वो पुण्य के कारण में नहीं आएंगी। किं जीव दया धम्मो जन्ने हिंसा विहोदि किं धम्मो, इच्छेवमादि शंका तदकरणं जानने शंका। क्या जीव दया धर्म है? और जन्ने हिंसा भी किं धम्मो होदि, क्या प्राणियों की हिंसा भी धर्म हो सकती है? या जन्ने यानी यज्ञ में प्राणियों की बलि चढ़ाना भी धर्म है? इच्छेव मादि शंका, इत्यादि मन में जो विचार उठते हैं उसी को शंका कहते हैं, और शंका का न होना ही सम्यक्त्व का निःशंकित अंग है। अब अंगों का वर्णन है, अंगों का वर्णन यानी जो 8 अंग होते हैं ना सम्यक दर्शन के, उनका वर्णन। टीका में कोई खास बात दी हो तो देख लेते। हाँ, जैसे एक श्लोक लिखा है पांचवी पंक्ति में टीका में, औषध्य पशवो वृक्षास्तिर्यंच पक्षिणो नराः यज्ञार्थम निधनम प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितां गतिम। बोले कि औषधियाँ, औषध्य है, ठीक है, दो शब्द आते हैं औषध और औषधि। संस्कृत कोश में दो शब्द आते हैं, औषधि शब्द नहीं है, औषध शब्द है, और फिर औषधि, ओ और औ का फर्क है। अगर आखिरी में ई की मात्रा लगा रहे हो तो शुरू में ओ रहेगा, और आखिरी में अगर औ लगा रहे हो तो फिर नहीं, शुरू में अगर औ लगा रहे हो तो आखिरी में ध रहेगा, औषध। लेकिन लोग बहुत अच्छे उच्चारण के साथ औषधि ले ली आपने, ऐसे करके बात करते हैं। औषधि, औषधि नहीं होता, औषध होता है, और औषधि ये शब्द होता है। तो औषधियां, पशु, वृक्ष, तिर्यंच पक्षी, नर यानी मनुष्य। अब देखिए तिर्यंच शब्द अन्य मतों में भी है, श्लोक में आया ना, ये यज्ञ, यज्ञ के लिए अगर निधन को प्राप्त हो जाए तो इनकी उत्तम गति हो जाती है। मैंने जो औषधियां, जो जानवर यज्ञ में होम दिए गए हैं उनको उत्तम गति प्राप्त होती है, देवगति। और कुछ लोग तो मोक्ष भी मानते हैं, अन्य मत में कुछ लोग मानते हैं कि मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। गोसवे सुरभिम हन्यात राजसूयेतु भूभुजम अश्वमेधे हयम हन्यात पौंडरीके च दंतिनम। गोसवे, गोमेध जो यज्ञ होता है उसमें सुरभिम हन्यात गाय की बलि चढ़ाना चाहिए, और राजसूये तो भूभुजम, और राजसूय यज्ञ में भूभुजम, भूभुजम का अर्थ क्या है, भुवम भुनक्ति इति भूभुजम, भूभुज, भूभुक तम भूभुजम, यानी जो पृथ्वी की रक्षा करने वाला राजा होता है राजसूय यज्ञ में उसकी बलि चढ़ानी चाहिए। ऐसा एक श्लोक लिखा हुआ है इसमें, उसका अर्थ बतला रहा हूं। आप ये मत समझना कि यहाँ उपदेश मिल रहा है आपको। अश्वमेधे हयम हन्यात, और अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि चढ़ानी चाहिए। पौंडरीके च दंतिनम, और पुंडरीक नाम का जो यज्ञ होता है उसमें दंतिनम यानी हाथी को होम देना चाहिए। फिर उसके आगे क्या लिखा, यज्ञार्थ पशव सृष्टा स्वयमेव स्वयं भुवा यज्ञो हि भूत्यै सर्वेषां तस्माद् यज्ञे वधो वधः। बोले कि ब्रह्मा ने इन सब जानवरों की, इन प्राणियों की जो सृष्टि की है वो यज्ञ के लिए ही की है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ करने से लाभ क्या होता है, सर्वेषां भूत्यै, सबको वैभव की प्राप्ति होती है। यज्ञ करने पर सबको वैभव की प्राप्ति होती है, तस्मात्। और यही कारण है कि यज्ञ में ये जो बलियां चढ़ाई जाती है, जो हिंसा होती है, वो हिंसा नहीं है, ऐसा उनके यहाँ। तथा यजुर्वेद ऋचय, फिर यजुर्वेद की ऋचाएँ दी हैं, सोमाय हंसना लभते वायवे बलाका इंद्राग्निभ्याम क्रुंचान मित्राय मद, क्या लिखा, मदगुन वरुणाय नक्रान। सोमाय हंसान आलभते, सोमदेव के लिए हंसों की बलि चढ़ाई जाती है, और वायवे बलावका, और वायु के लिए बगुलों की बलियां, बलि चढ़ाना पड़ती है। इंद्राग्निभ्यां क्रुंचान, इंद्र और अग्नि देवता के लिए क्रुंचान, क्रौंच पक्षी होता है ना, क्रेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उसकी बलि चढ़ाना चाहिए। फिर मित्राय मदगुन, मद्गुण का क्या अर्थ है? मित्रा का अर्थ होता है सूर्य के लिए किसी और प्राणी की बलि चढ़ाना चाहिए, वरुणाय नक्रान, और समुद्र देवता के लिए मगरमच्छों की बलि चढ़ाना चाहिए। और ये यजुर्वेद की ऋचाएं हैं ये। फिर वसुभ्य ऋष्या ना लभते, और वसुभ्य, वसुभ्य का अर्थ होता है जो आठ दिशाएं हैं उनके लिए, अथवा वसु का अर्थ धन भी होता है, कुबेर भी होता है, तो इनके लिए ऋष्यान ये भी कोई होंगे, इनकी हिंसा की जाती है। और रुद्रेभ्यो रुरून, रुद्रों के लिए, इनने कुछ अर्थ किया कि नहीं पंडित जी ने? हाँ दिया तो है, अच्छा दिया। ये क्या कि ये सारे शब्द जो है कोश के शब्द हैं, किसके लिए कौन से प्राणियों की हिंसा की जाती, बलि जी दी जाती है। तो ऐसे बहुत लंबे, मतलब कितनी सारी ऋचाएं दी हैं। खतरनाक दी है ऐसे। देखो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं अपन। यजुर्वेद की ऋचाओं में लिखा है कि सोम देवताओं के लिए हंसों का, वायु के लिए बगुलों का, इंद्र और अग्नि के लिए सारसों का, क्रौंच पक्षी को सारस बोल रहे हैं, सूर्य देवता के लिए जलकारों का, मतलब वही मगरमच्छों का, नहीं जलकारों का, वरुण देवताओं के लिए नक्रों का, मगरमच्छ वरुण देवता के लिए, फिर छह ऋतुओं में से वसंत ऋतु के लिए कपिंजल पक्षियों का, ग्रीष्म ऋतु के लिए चिरौटा पक्षियों का, वर्षा ऋतुओं के लिए तीतरों का, शरद ऋतु के लिए बत्तखों का, हेमंत ऋतु के लिए ककर पक्षियों का, और शिशिर ऋतुओं के लिए विककर पक्षियों का वध करना चाहिए, समुद्र के लिए मच्छों का, मेघ के लिए मेंढकों का, जलों के लिए मछलियों का, सूर्य के लिए कुलीशय नामक पशुओं का, वरुण के लिए चकवों का वध करना चाहिए। तथा लिखा है सूत्रमणि यज्ञ में जो इस प्रकार की मदिरा पीता है वह मदिरा पीकर भी मदिरा नहीं पीता। श्रुति में तीन प्रकार की मदिरा पीने योग्य कही है, पेष्टी, गौड़ी और माधवी। पेष्टी का अर्थ होता है कि अनाज के चूर्ण से बनने वाली बियर वगैरह, और गौड़ी का अर्थ होता है गुड़ से बनने वाली रम वगैरह, और माधवी का अर्थ होता है मधु से बनने वाली या अंगूर से बनने वाली वाइन। तो ऐसे तीन प्रकार की मदिराएं होती है, उनको पीने योग्य श्रुतियों में। देखो ये यहाँ पर सिर्फ ये समझाया जा रहा है आपको कि अन्य मत में कितनी सारी ऐसी बातें हैं जिनको धर्म माना गया है, जैन धर्म में ये धर्म नहीं है इत्यादि सुनकर क्या जीव वध में धर्म है, इस प्रकार की शंका का भी न होना, अर्थात जीव वध को अधर्म ही मानना निशंकित गुण है। इस तरह क्या जैन धर्म में कहे हुए मूल गुण और उत्तर गुणों का पालन करना धर्म है, अथवा तापसों के पंचाग्नि तप तपने और कंदमूल फल खाने में धर्म है? क्या जिनेन्द्र देव ही सच्चे देव हैं, अथवा ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, कपिल, बुद्ध वगैरह सच्चे देव हैं? क्या जैन धर्म में कहे हुए सात तत्व, छह द्रव्य, पांच अस्थिकाएं और नौ पदार्थ के श्रद्धान में धर्म है, अथवा अथवा सांख्य, सौगत आदि मतों में कहे हुए तत्वों के श्रद्धान में धर्म है, इत्यादि संदेह का न होना निशंकित गुण है। सारांश यह है कि जिन भगवान द्वारा प्रतिपादित तत्व बहुत गहन है, युक्तियों से उनका खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसा जानकर और मानकर जिनेन्द्र देव, जिन शास्त्र, जिन धर्म और जैन तत्वों में श्रद्धा, रुचि और प्रतीति होनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य राग, द्वेष अथवा अज्ञान से असत्य बोलता है, असत्य वचन के कारण राग, द्वेष और अज्ञान है। वीतराग और सर्वज्ञ देव में ये दोष नहीं होते, अतः उनके द्वारा कहे हुए तत्वों और मोक्ष के मार्ग में संदेह नहीं करना चाहिए, निस्संदेह होकर उनके प्रवृत्ति उनमें प्रवृत्ति करना ही कल्याण है। दयभावो वियधम्मो हिंसा भावो न भण्डे धम्मो, ये संदेहा इति संदेहा भावो निसंकार निम्मला होदी। दया भावो विय धम्मो हिंसा भावो न भण्डे धम्मो, दया भाव ही धर्म है और हिंसा भाव धर्म नहीं कहा जा सकता। इति संदेहा भाव, इस प्रकार संदेह का अभाव होना ये निर्मल निशंकित गुण हो गया। मुनि धर्म का वर्णन 392 नंबर गाथा से प्रारंभ करते हुए अभी चल ही रहा है। 392वीं गाथा में कहा था कि जो रत्नत्रय से युक्त और क्षमादिक भावों से परिणत रहता है नित्य ही और सबके प्रति मध्यस्थ भाव रखता है, वह साधु ही साक्षात धर्म मूर्ति होते हैं। वह धर्म 10 प्रकार का है, क्षमादिक सुप्रसिद्ध जो 10 भेद हैं उनकी अपेक्षा, इसलिए उनको परम भक्ति के साथ उन क्षमादिक 10 धर्मों को जानना चाहिए, जो देव मनुष्य और तिर्यंचों के द्वारा किए हुए उपसर्ग में भी क्रोध से तप्त नहीं होता। वह उपसर्ग कितना भी क्रूर क्यों न हो, उन मुनि के पास निर्मल क्षमा उत्तम क्षमा होती है। उत्तम ज्ञान है प्रधान जिसमें, उत्तम तपश्चरण करने में भी जो सहज परिणत है, लेकिन तो भी अपने आप को बड़ा नहीं समझते, उनका उत्तम मार्दव धर्म है। जो टेढ़ा विचार नहीं करते, टेढ़ी चेष्टा नहीं करते और टेढ़ा वचन नहीं बोलते, अपने दोषों को नहीं छिपाते, उनका आर्जव धर्म होता है। जो शांति अथवा समता रूप जल द्वारा और संतोष रूपी जल से तीव्र लोभ के मल पुंज को धोते हैं, भोजन के प्रति गृद्धता से रहित होते हैं, उनके पास निर्मल शौच धर्म अर्थात उत्तम शौच धर्म होता है। जो जिन वचन जिन वाणी ही बोलते हैं, भले समस्त जिन वाणी का पालन न कर सकते हो और व्यावहारिक दृष्टि से भी जो झूठ नहीं बोलते, वो सत्य धर्म के धारी होते हैं। जो जीवों की रक्षा में तत्पर रहते हैं, गमन आगमन आदि सब कार्यों में, और तृण छेद की भी कामना नहीं करते, यानी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं तिनकों के रूप में, उनको भी तोड़ना नहीं चाहते, वो संयम धर्म के धारी होते हैं। फिर जो इसलोक और परलोक के सुखों के प्रति निरपेक्ष हैं और समता भाव रखते हैं, अनेक प्रकार के कायक क्लेश भी करते हैं, उनका उत्तम तप धर्म होता है। जो कामवर्धक सरस आहार का त्याग कर देते हैं और राग द्वेष उत्पन्न करने वाले उपकरणों को छोड़ देते हैं, और जिस वस्तिका में ममत्व पैदा हो जाए उसके त्यागी होते हैं, वे उत्तम त्याग धर्म के धारक होते हैं। जो तीन प्रकार से चेतन अथवा अचेतन सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, तीन प्रकार यानी मन वचन का, और लोक व्यवहार से भी विरत रहते हैं, वो उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारी होते हैं। जो स्त्रियों की संगति के त्यागी होते हैं, उनकी सुंदरता को नहीं देखते और काम कथा आदि से भी निरीह रहते हैं, उसकी इच्छा नहीं करते, उनके पास 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है, अर्थात वो उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं। जो स्त्रियों के टेढ़े दृष्टिपातों से भी विकृति को प्राप्त नहीं होते, वे ही शूरवीरों में शूरवीर होते हैं, रणांगण में शूरवीरता दिखलाने वाले को हम शूर नहीं समझते। इस तरह 10 प्रकार का धर्म 10 लक्षण वाला होता है नियमतः। अन्य कोई धर्म नहीं है जहाँ सूक्ष्म हिंसा का भी प्रावधान हो। मुनि धर्म में हिंसा की छूट नहीं है। हिंसा रूप जो आरंभ होता है वो शुभ नहीं हो सकता, चाहे वो हिंसा देवताओं के लिए की जाए या गुरुओं के कार्यों में की जाए, लेकिन हिंसा पाप मानी गई है। और धर्म जो होता है वो दया प्रधान होता है, साधु धर्म। फिर उसके अंतर्गत और बहुत सारी बातें बतला दी, जैसे श्वेतांबर मत में कुछ गाथाएं आती हैं, देव गुरु धर्म के कार्य में अगर चक्रवर्ती की सेना को भी चकनाचूर करो, साधु के पास अगर ऐसी रिद्धि या वैभव ऐसा बल हो तो चक्रवर्ती की सेना को भी चकचूर कर डालना चाहिए, नहीं करता तो अनंत संसारी है। संघ के कारण अगर चक्रवर्ती की सेना को नष्ट करे तो उचित है, न करे तो अनंत संसारी है। इसी प्रकार और भी कुछ मान्यताएं दी है। फिर मधु मद्य और आमिष अर्थात मांसाहार की कल्प में स्थापना की गई कि अगर बीमार हो या वृद्धावस्था हो और कभी लेना चाहें तो फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा कहने वाले उन्हीं के ग्रंथों में फिर उल्लेख मिलता है कि ये सारे कथन जिन्होंने किए हैं ऐसे आचार्य नरकगामी हैं, और उनकी संख्या भी दे दी है। अब इतनी संख्या कितने समय में जाएंगे नरक, ये इसमें उल्लेख नहीं किया है। अभी अपने यहाँ एक सहजानंद वर्णी हुए, मनोहर वर्णी, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने भावपाहुड़ प्रवचन में लिखा है कि 33 करोड़ मुनि पंचम काल में नरक जाएंगे, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि रेफरेंस नहीं दिया। क्या होता है कि जब भी कोई बड़ी बात आप करते हो, उपदेश में प्रस्तुत करते हो, तो सब प्रमाण होनी चाहिए बात। बिना प्रमाण के अगर 33 करोड़ मुनि नरक जाएंगे, हम तो ये पूछते हैं कि सारे 21,000 साल में पहली शंका तो ये है कि कितने करोड़ मुनि हो सकते हैं, दिगंबर मुनि, द्रव्यलिंगी भावलिंगी सबको टोटल कर लो और फिर इतना अनुमान लगाओ 100 साल में कितनी दीक्षा हुई है, हिसाब लगाओ। फिर 1,000 साल में कितनी दीक्षा हो सकती है और 21,000 साल में कितनी हो सकती है, इस हिसाब से चलो अपन। 33 करोड़ की संख्या कहते किसको है? अभी भारत की आबादी कितनी है? 110 करोड़ है लगभग। 110 करोड़ में मुनि कितने हैं? 500 से ऊपर हो सकते हैं क्या, या 600-700, उससे ज्यादा तो नहीं है। और फिर अगर पूरी शताब्दी में अपन मुनियों की संख्या गिन लो तो कितने होंगे? दस हजार होंगे। अब पूरा हिसाब लगाओ, 21,000 साल में कितने मुनि हो सकते? 10,000 मुनि हो ही नहीं सकते एक शताब्दी में। अब अगर 33 करोड़ मुनि होते 21 साल में और वो सब नरक जाने वाले, ये भी लिखा उन्होंने भावपावड़ प्रवचन में, उन्होंने ये उल्लेख किया है कि 33 करोड़ मुनि पंचम काल में नरक जाएंगे। अब क्या है कि अपन किसी के प्रति राग द्वेष के साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके वचनों की प्रामाणिकता को परख रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई अभी वर्तमान के आचार्य हो, तो उनके भी वचनों को अपन देखेंगे कि आगम में है कि नहीं। क्या है कि कोई भी कुछ भी बोल दे तो फिर उसको अपन मान नहीं सकते। वो तो हम तो, अगर हमारे गुरु जी भी अगर कोई बात करें तो हम उनसे विनम्र शंका करेंगे, उनसे पूछेंगे, निवेदन करेंगे कि आचार्य श्री ये किस आचार्य किस आगम का कथन है। हम अगर कोई हम किसी के सामने ये बात रखें और वो प्रश्न करे कि भाई ये कहाँ का कथन है, तो फिर हम बता तो सकें? ऐसा बोलने से नहीं चलता कि मेरे गुरु ने कहा, मेरे गुरु ने तो फिर यहाँ सबके अलग अलग सैकड़ों गुरु हो सकते हैं, ये कोई प्रमाण नहीं हुआ। शास्त्र कौन सा है? सहजानंद जी पर जिनको श्रद्धा है वो कहेंगे कि हाँ जाएंगे 33 करोड़, लेकिन ये अनुमान लगाने की बात है कि 33 करोड़ होंगे क्या। 33 करोड़ का मतलब क्या है? एक एक 1000 वर्ष में कितने मुनि हो सकते हैं, इस पर अपन अनुमान। चलो 100 साल में अभी लगभग देखो, शांति सागर महाराज जी, आदि सागर महाराज जी, महावीर कीर्ति महाराज जी, इन सब के शिष्यों को मिला लो, जोड़ लो पूरा कुल, 1900 से लेकर 2000 तक कितने साधु हुए होंगे, मुनि। ज्यादा से ज्यादा 1000 हुए होंगे 100 साल में, तो 1000 साल में 10000 होंगे, और 10000 साल में 1,00,000 होंगे, 20000 साल में 2,00,000 होंगे, और 21000 साल में 2,01,000। और अगर अपन ऐसा भी मान लो कि भाई अवसरपिणी काल है, शुरू में ज्यादा होते रहे होंगे, तो फिर इससे डबल कर दो संख्या, कौन मना कर रहा है। 4,02,000 कर दो, 2000 कर दो, और अगर इससे भी नहीं संतुष्टि होती है तो फिर 8,00,000 कर दो, कौन मना कर रहा है। लेकिन 33 करोड़ किसको कहते हैं? अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, अन्य संप्रदाय मान लो कहां से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, 33 करोड़ मुनि हो ही नहीं सकते पंचम काल में, द्रव्यलिंगी भी, क्योंकि अभी जो अपन ने हिसाब लगाया, अपन ने उसको डबल कर दिया, डबल करने के बाद उसको अगर 4 times भी कर दो तो भी नहीं होते, तो बिल्कुल कोरी बकवास है कि 33 करोड़ जैन मुनि नरक जाएंगे। लेकिन विश्वास मानते हैं लोग, और अभी जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर रत्नमाला एक 7 भाग निकले थे उसके, उसकी 5वें भाग के 8वें अध्याय में मुनि का स्वरूप शीर्षक से उन्होंने वर्णन किया है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि पंचम काल में कितने मुनि नरक जाएंगे, तो वहाँ पर उन्होंने 7.5 करोड़ लिखा है। लेकिन उसके प्रति भी हमारी तरफ से चुनौती है कि 7.5 कोई सिद्ध करके बता दे, 7.5 करोड़ मुनि होंगे, ये अगर कोई सिद्ध करके बता दे तो फिर हम माने उसको। अपन ने अभी कितनी संख्या जोड़ जोड़ करके, ज्यादा से उसको डबल करके, उसको 4 times करके भी देख लिया तो भी वहां तक नहीं पहुंची संख्या। अब कितने हुए कुल मिलाकर के, लाखों में आई ना संख्या, अब लाखों को ओवर कितना, 100,00,000 का 1 करोड़ होता है, 100,00,000 का 1 करोड़ होता है, और फिर उसमें फिर 7.5 करोड़ करो तो फिर कैसे बात बनेगी। उनने लिखा है कि फिर उसमें ये प्रश्न किया है कि ऐसा आगम प्रमाण कहाँ है, तो फिर उनने बोला एक गाथा दी उसमें, वो किताब आप देख सकते हैं, आप चाहो तो नाम याद रख लेना, जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर रत्नमाला भाग 5 अध्याय नंबर 8 मुनि का स्वरूप। ये सब मुमुक्षु मंडल के लिए हम मतलब पूछते हैं कि भाई ये जो बात लिखी है ये कितनी प्रामाणिक है, उसमें गाथा क्या दी है, भरे पंचम काले जिण मुद्दा धार सव्वे सिम, 7.5 करोड़ जाइए निगोए मध्यम में, ये गाथा थी उनने। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न उनसे ये है कि ये गाथा कौन सी भाषा में है, प्राकृत में है, अपभ्रंश में है, संस्कृत में है, ढूंढारी में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, कौन सी भाषा में, पहले ये बता देगी भाषा कौन सी है, और फिर ग्रंथ कौन सा है जिस ग्रंथ से वो गाथा प्रस्तुत कर रहे हैं, और कहाँ से आई। तो उनने नीचे अगली शंका में ये पूछा है कि ये गाथा कहाँ की है, तो बोले कि ग्रंथ का नाम तो हमें याद नहीं है, लेकिन हमें एक भाई ने बताया था। ये जवाब मतलब वहाँ पर आप मुनि का स्वरूप जिस अध्याय में देना चाह रहे हैं वहाँ पर आप ये जवाब दे रहे हैं कि एक भाई ने बताया था, कौन है भाई, उस भाई का ही नाम बता दो ना, कौन है वो भाई, उसकी डायरी की अपन तलाशी कर लेंगे कहीं से। तो ऐसी फर्जी गाथाओं से जनता को गुमराह करना जिन वाणी का अवर्णवाद है। अब उसमें फिर दूसरी शंका हमारी ये है उस गाथा में, उस गाथा में लिखा है जाइए निगोय मध्यमी, वो निगोय शब्द का अर्थ नरक कहां से निकाला? शंका समझ में आई? वो क्या दे रहे हैं कि 7.5 करोड़ मुनि नरक जाएंगे पंचम काल में, और गाथा में क्या लिखा है भरिए पंचम काले जिन मुद्दा धार सव्वे सिम, 7.5 करोड़ जाइए निगोय मध्यमी। निगोय का अर्थ नरक कहां से निकाला? कहीं किसी कोश में या किसी भाषा में है क्या निगोय का अर्थ नरक कहां से हो गया? तो ऐसे फर्जी प्रमाणों से अगर कोई व्यक्ति मुनियों के प्रति किसी की अश्रद्धा पैदा करता हो तो व्यर्थ है। और फिर अश्रद्धा करने वाला भी मतलब बहुत भोला आदमी हो सकता है। क्या है कि जितने लोग इस प्रकार से संप्रदायों में बढ़ जाते हैं वो वास्तव में देखा जाए तो वैज्ञानिक बुद्धि वाले नहीं होते। अगर बुद्धिमान होगा, तार्किक होगा, तो वो वहीं से पकड़ लेगा कि ये बात यहाँ पर दाल में काला है, ये बात तुम्हारी जमीन है, बिल्कुल शर्तिया पकड़ में आएगी बात। झूठ जो है वो पारखी व्यक्ति से छुप नहीं सकता। ये जितने लोग असत्य का समर्थन करते हैं उनमें से एक भी पारखी नहीं है, और यदि पारखी है तो स्वार्थी है। या तो स्वार्थी पारखी उनके बहकावे में आएगा या फिर उसका समर्थन करेगा, या फिर जो पारखी नहीं है वो उनका समर्थन करेगा, बाकी कुछ नहीं। तो इस प्रकार ये जो बातें हैं ये तो 55,55,542 ऐसे हिंसा प्रवर्तक आचार्य नरकगामी होंगे, मांसाहार आदि का प्रवर्तन करने वाले। तो मांसाहार का प्रवर्तन करने वाले ये कौन है भगवान जाने। इन्होंने तो संशयी ना आचार्य लिखा। संशयी आचार्य का मतलब होता है कि उसी मत के आचार्य। अपन सारे विश्व में देखें तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं। पूना में तो हमने यहां तक पूछा था उनसे, डॉक्टर साहब से, कि ओशो रजनीश ने यद्यपि स्वयं मांसाहार और अंडे तक का सेवन नहीं किया अपनी चर्या में, लेकिन उन्होंने जो फॉरेनर्स आए उनके पास उनको मांसाहार छोड़ा करके बोला कि एग्स ले सकते हो, बोले इसके पूरे मतलब प्रमाण सही थे ये बातें। उनके यहां जाकर के अपन देख भी सकते हैं चाहो तो, जिसको जानकारी विशेष छानबीन करनी हो तो। तो एग्स का समर्थन कैसे कर दिया उन्होंने? तो ऐसी बहुत सारी बातें आती। तो हिंसा को किसी प्रकार से धर्म में शामिल करना, और वो भी इसीलिए जैन दर्शन में क्या कहा कि अगर आप प्राणी घात को हिंसा मानते हो तो फिर प्राणी घात 12वें गुणस्थान में भी होता है। कैसे होता है? आपने सुना था उस दिन कि जब जीव क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर 12वें गुणस्थान में पूरे 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर डालते हैं कोई मुनिराज, तो उसी समय उनके शरीर में निवास करने वाले अनंत जीव, जो निगोद काय वाले जितने जीव हैं शरीर आश्रित, वो सब नष्ट हो जाते हैं, और तब जाकर के वो शरीर परम औदारिक बनता है और आत्मा केवल ज्ञान से मंडित होती है। यानी केवल ज्ञान जहां प्रकट होता है वहां इस शरीर मनुष्य शरीर में कितने जीव हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो जीवों का नष्ट होना मात्र हिंसा नहीं है, किंतु किस भाव से वो नष्ट हो रहे हैं, नष्ट होना और साथ में अपने भावों में विकृति होना। तो उसमें सर्वार्थ सिद्धि में इस बात का खुलासा था कि संक्लेश परिणाम के साथ अगर किसी भी जीव की विराधना होती है, चाहे वो अपनी आत्मा में हो चाहे दूसरों में हो, वो विराधना या वो जो प्राण व्यपरोपण है उसका नाम हिंसा है। और इसीलिए धवला में जब शंका की कि इतने जीवों का घात हो रहा है वहाँ 12वें गुणस्थान में, तो फिर वो साधु हिंसक हैं कि नहीं है? तब आचार्य महाराज ने कहा कि प्रमत्त योगात प्राणव्यप्रोपण हिंसा न चास्य प्रमाद योगोस्ति। 7वें गुणस्थान से प्रमाद अभाव को प्राप्त हो चुका है, और प्रमत्त योग का अभाव तो बहुत पहले हो गया, जब से व्रती हो गए थे तब से। तो इसलिए वहां तो पूर्ण अहिंसा है, जीवों का घात होना मात्र हिंसा नहीं है। लेकिन ये जो बातें यहां पर लिखी गई हैं, किस प्रकार से जीवों का घात हो रहा है, क्यों उसका समर्थन किया गया है, यज्ञ में बलि चढ़ाने की चर्चा क्यों है, जिनेंद्र वर्णी जी ने लिखा है कि जिनकी जिह्वा को मांस की चाट पड़ी है, यानी जिनको मांस खाए बिना चैन नहीं पड़ता, अब अगर वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो और फिर छल कपट में बहुत निष्णात हो तो क्या करेगा कि किसी तरीके से उस बात को धर्म सिद्ध कर देगा, क्योंकि आम जनता धर्म को आंख बंद करके स्वीकार करती है। बाकी धनिया खरीदने जाएंगे तो फिर आंख खोल करके खरीदेंगे लेकिन धर्म को आंख बंद करके मानने वाली है जनता भारत की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी उपाय से वो जो मांस खाने की जो प्रक्रिया है उसको धर्म में सम्मिलित करना पड़ेगा। बस इतना कर दे वो तो फिर सफल, और यही किया है लोगों ने। वास्तव में देखा जाए तो जिस जगत माता को, देवी को बलियां चढ़ा करके ये संतुष्ट करना चाहते हैं, उनको इतना विचार करना चाहिए कि जगत माता कह रहे हो तो फिर उस प्राणी की माता है कि नहीं, वो जिसकी बलि चढ़ाने जा रहे हो उस प्राणी की माता हुई कि नहीं। अगर आप जगत माता मानते हो तो उसकी माता हुई कि नहीं हुई, हुई तो कोई भी माता अपने बच्चे की बलि चाहेगी, फिर माता को संतुष्ट करने के लिए उसके बच्चे की बलि चढ़ा रहे हो, ये कहां का धर्म हो गया। तो इस तरह ऐसी सैकड़ों बातें जो अगर तर्क वितर्क से चलो तो सब बातें खंडित हो जाए, ध्वस्त हो जाए। लेकिन क्या है कि धार्मिक उन्माद इतनी बुरी चीज है कि उसके कारण व्यक्ति लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, फिर वो तार्किक दृष्टि से विचार भी नहीं करता। जी कृष्णमूर्ति ने जो लिखा है गॉड के बारे में, उसको अगर कोई भी पढ़ ले तो बिल्कुल दिमाग हिला के रख दे वो, कि तुम जिसको भगवान मानते हो, सृष्टि का कर्ता मानते हो और सबका उपकारी मानते हो, उसके रहते हुए इतने अनर्थ कैसे हो सकते, बोले इतने अनर्थ, और फिर तुम बोलते हो कि संभवामी युगे युगे, हम हर युग युग में अवतरित होते हैं, हम जन्म लेते हैं और फिर अनर्थ को नष्ट करते हैं। कितना अनर्थ बढ़ गया, आदमी आदमी को खा गया, अब किस बात का इंतजार है। शंघाई देश, शंघाई शहर में और हांगकांग में आदमियों का मांस खाया जाने लगा और अभी भी भगवान अवतरित नहीं हो रहे, कैसे भगवान है। तो फिर ये सब बातें एक प्रकार से क्या है कि जो अंधश्रद्धालु लोग हैं उनको बहकाने के लिए तो ठीक है, लेकिन सच्चाई को परखने वाले इन बातों में नहीं बहकते। एक मछुआरे की बेटी ने उनके पिता को समझा दिया था, बर्फ गिरने लगे और फिर उनके पूरे खप्पर टूट गए, खपरे के मकान में रहते थे, खप्पर टूट गए, तो फिर वो राम 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 बोलने लगे। तो फिर वो बेटी क्या बोलती है कि नहीं बचाएगा राम, बोले राम को बचाना होता तो वो मछलियों को बचाता तेरे जाल से अपने बाप से कह रही हो। और ऐसे ऐसे तर्क दिए उस बच्ची ने कि वो पिताजी का दिमाग ब्रेन वॉश हो गया। फिर अंत में उसने वो धंधा ही छोड़ दिया उस पिता ने, और धंधा छोड़कर उसने फिर बोले कि जाल का क्या करोगे, किसको बेचोगे, इससे भी तो पैसे आएंगे। बोले कि नहीं, ऐसे पैसे नहीं चाहिए मेरे को, बोले हिंसा के, न भगवान सुख दुख का कारण नहीं है, अपने पाप दुख के कारण है और अपने पुण्य सुख के कारण है। बोले कोई पाप करता हो और भगवान उसको सुख दे दे तो फिर भगवान से बड़ा अन्यायी कौन हो सकता है, जो पापी को सुखी बना दे, और जो धर्म करता है उसको भगवान दुखी करे तो फिर ये भी अन्याय हो गया। ऐसी सैकड़ों बातें। अब जय कृष्णमूर्ति ने तो कुछ पेजेस लिखे हैं ऐसे कि उसको पढ़ करके किसी का भी ब्रेन वॉश हो जाए। बोले कि इंसान, भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने भगवान को बनाया। और यहाँ जैन दर्शन में क्या बताया, जैन दर्शन में बताया कि सब आदमी बिल्कुल क्रूड फॉर्म में है। क्रूड फॉर्म मतलब जैसे कच्ची धातु होती है ना, बस वो हाल है सब जीवों का। शुद्धिकरण हो जाए तो सबसे शुद्ध अवस्था का नाम भगवान है, बस। कोई अनादि भगवान जैन दर्शन में माना नहीं गया, और फिर सृष्टि का कर्ता, पालन करता, संहार करता, ये भी नहीं माना गया। ये ठीक है, देखो अपन दृष्टियों से लगाए तो फिर बहुत सुंदर ढंग से मतलब सबका समाधान हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी बहुत सुंदर चर्चाएं अपन कर सकते हैं जैन दर्शन की युक्तियों के माध्यम से। आप चले खंडन करने जाओगे तो द्वेष अपना बहुत प्रबल होता है। संसारी प्राणी के अंदर द्वेष की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। राग जो होता है वो थोड़ा हो जाए फिर कब मौका पड़े तो टूट भी जाता है। कितना, अब देखो 2 साल तक के जो वायदा करता है कि जीवन भर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फिर शादी के बाद 2 साल बाद शादी के फिर वो एक दूसरे पर शासन करना चाहते हैं, और फिर 4 साल बाद क्या स्थिति होती है, और 40 साल बाद क्या स्थिति होती है। तो राग जो होता है वो जरा सा निमित्त मिलने पर टूट जाता है, और द्वेष जो होता है, द्वेष इतना प्रबल होता है कि 10 जन्म तक कमठ का द्वेष शांत नहीं हुआ था, जन्म जन्मांतरों तक चलता है। वैर की गांठ और स्नेह की गांठ दोनों चल सकती है, लेकिन द्वेष ज्यादा सरल है। राग की अपेक्षा द्वेष करना सरल है। राग अपनी इंद्रियों को जो प्रिय लगेगा उससे राग होगा, और कुछ ही क्षणों बाद अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर तुरंत द्वेष हो जाएगा। तो द्वेष पूर्वक किसी अन्य मति का खंडन करना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा उदार हृदय होकर के, जैसे जिनेंद्र वर्णी जी ने एक प्रभु वाणी नाम की किताब लिखी है, अभी हमारे पास रखी हुई है, उसमें उन्होंने हर मत की हर बात को जैन नयों से किसी अपेक्षा से ठीक सिद्ध किया है। ये बहुत कठिन काम है। गलत है ये सिद्ध करना बहुत सरल है, लेकिन सही है ये सिद्ध करना कठिन। जैसे वायु का हमने उदाहरण दिया था आपको, पत्ता हिलता है तो वहां अन्य मत में क्या कहा है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता, ठीक है ना। तो जिनेंद्र वर्णी जी ने कैसे सिद्ध किया उसको, बोले कि निश्चय से चाहे वो स्थावर हो या त्रस हो, सब प्रकार के जीव निश्चय से परमात्मा है। अप्पा सो परमत्पा, सब वे शुद्धा हो शुद्धनया, तो निश्चय नय से लगा लो कि वो वायु का एक जीव भी परमात्मा है, ठीक है। अब हवा जब चलती है तो पत्ते हिलते हैं, तो परमात्मा के बिना हिले क्या पत्ते, बताओ। परमात्मा के बिना हिला पत्ता, नहीं हिला, तो फिर इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे देखो युक्ति से अगर चलो, नयों की विवक्षा लगा करके चलो तो हो जाता है, लेकिन आदमी क्या है कि अपने अहंकार के अनुसार भगवान का स्वरूप बना करके सोचता है कि भगवान जैसे मैं अपने परिवार को चलाता हूं वैसे भगवान पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो ये जो मान्यता है, इस ईश्वर कर्तृत्व को जैन दर्शन में मान्य नहीं किया गया है। जैन दर्शन बताया कि हर वस्तु का अपना स्वभाव है, 6 द्रव्य हैं, अनादि से हैं, किसी द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं। पर्यायों के निर्माण में कभी कोई निमित्त हो सकता है, जैसे गेहूं के आटे की पर्याय में वो चक्की निमित्त है, और आटे से रोटी की पर्याय में कोई माता या बहन निमित्त है, तो फिर श्रेय उसको दे दिया जाता है कि भाई इसने बनाई। तो इस प्रकार निमित्त रूप से किसी को श्रेय देना अलग बात है, लेकिन किसी को कर्ता धर्ता ही मान लेना सबका, तो इस कर्तृत्व का जैन दर्शन में निषेध है। और 2 प्रकार के ऐसे पदार्थ है जो क्रियावान है, जीव और पुद्गल, बाकी सारे द्रव्य निष्क्रियाणी च, निष्क्रिय है। निष्क्रिय माने उनमें कोई हलचल ही नहीं, वो अनादिकाल से जहाँ है वहीं है, उनमें कोई हलचली या स्पंदन नहीं है। वो कौन से 4 द्रव्य हैं जिनमें हलचली नहीं है, जो हिलते नहीं, कभी स्थानांतरित नहीं होते, वो कौन से द्रव्य हैं? आकाश। आकाश हिलकर जाएगा कहाँ, क्योंकि जहां भी जाओ वहां आकाश ही आकाश है। जो सर्वव्यापी होता है वो हिलता नहीं है, ठीक है ना। पूरा थैला आम से भरा हो तो उसमें से कोई आम हिल सकता है? नहीं हिल सकता। अब किसी बॉक्स में बहुत सारे फल हैं, लेकिन उसमें से कुछ निकाल लो आप, अब थोड़ा हिला दो तो फिर वो फल स्थानांतरित हो सकते हैं। इसी प्रकार आकाश सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापी होता है उसमें गति नहीं हो सकती, गति के लिए जगह चाहिए ना, तो पूरी जगह ही में वो चीज़ भर जाए तो फिर कहाँ से हिलेगा, निष्क्रिय है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य, ये भी निष्क्रिय। धर्म द्रव्य किसको कहते हैं, जो पूरे लोक में भरा हुआ है, और जैसे पानी मछली के लिए गति में सहायक है, वैसे ही वो धर्म द्रव्य सारे लोक में भरा हुआ है, और लोक में जो कुछ भी गतिवान है उसकी गति में वो उस पानी के समान सहायक है, धर्म द्रव्य। और फिर एक अधर्म द्रव्य है,